नमस्कार, आइए आज सुनते हैं ओ हेनरी की चर्चित कहानी द लास्ट लीफ भाग एक। वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई हैं और कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता दो तीन बार काट जाती है। इस सड़क के बारे में एक कलाकार के मन में अमूल्य संभावना पैदा हुई कि कागज, रंग और कैनवास का कोई व्यापारी यदि यदा कदा यहाँ आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से मुठभेड़ हो जाएगी और उसे एक पैसा भी वसूल किए बिना लौटना पड़ेगा। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच ग्राम नामक मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर जमा होने लगे। वे सब के सब उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी के मेहराबें, छत के कमरे और सस्ते किरायों की तलाश में थे। बस छठी सड़क से कुछ कांसे के लोटे और टीन की तश्तरियां खरीद लाए और गृहस्थी बसा ली। एक मकान की तीसरी मंजिल पर सूज और जानसी का स्टूडियो था। जानसी जोना का अपभ्रंश था। एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक सस्ते से होटल में हुई थी। कला में रुचि और खाने पीने की पसंद को लेकर दोनों में इतनी समानता थी कि दोनों के मिले जुले स्टूडियो का जन्म हो गया। यह बात मई के महीने की थी। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने बीसियों लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया, लेकिन पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस भीम काय फुफकारते देखते से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। फिर भी उसने जानसी पर हमला बोल दिया। वह बेचारी चुपचाप अपने लोहे के पलंग पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़कियों में से सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवारों को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावनाएं रुपए में 2 आना हैं, और वह भी तब यदि उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती और वे मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं तो इनका इलाज धन्वंतरी भी नहीं कर सकते। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि वह अब अच्छी नहीं हो सकती, वह कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। क्या उसके मन पर कोई बोझ है, डॉक्टर ने पूछा। सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल इच्छा है। चित्र? मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो, जैसे कोई नौजवान, कोई प्रेम, कोई लड़का। बिच्छू के डंक सी चुपती आवाज में सू बोली, नौजवान, प्रेम, पुरुष, छोड़ो भी डॉक्टर। अरे नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, डॉक्टर बोला। सारी बुराई की जड़ यही है। डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ मुझसे मुमकिन है उसे किए बिना नहीं छोड़ूंगा, पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है तब दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वह अगली सर्दियों में आने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे तो उसके जीने की संभावनाएं कम से कम दुगनी हो जाएंगी। क्रमशः। आइए सुनते हैं ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ का भाग दो। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने के काबिल आंसुओं से भर दिए। कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वह सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चादर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देख रही थी। उसे सोई हुई जानकर उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। तख्ते पर कागज लगाकर वह किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। नवोदित कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचाने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं। जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवोदित लेखकों को पत्रिकाओं में कहानियां लिखनी पड़ती हैं। ज्यों ही सू एक घुड़सवार जैसे ब्रिजेस पहने एक आंख का चश्मा लगाए किसी इडाहो के गडरिए के चित्र की रेखाएं बनाने लगी कि उसे एक धीमी आवाज अनेक बार दोहराती से सुनाई दी। वह शीघ्र ही बीमार के बिस्तर के पास गई। जॉन्सी ने आँख खोल ली थी। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कुछ गिनती हुई बोल रही थी, लेकिन वह उल्टा जाप कर रही थी। वह बोल रही थी 12, फिर कुछ देर के बाद बोली 11, फिर 10 और 9 और तब एक साथ 8 और 7। सू ने उत्सुकता से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां गिनने लायक है क्या? एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, एक पुरानी ऐठी हुई जड़ें निकाले हुए सदाबहार की बेल, दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर की ठंड मसों में उसके शरीर की पत्तियां ही तोड़ ली थी। शिशिर की ठंडे मौसम की बर्फीली हवाओं में उस बेल की सारी पत्तियां समझ लीजिए कि झड़ गई थी और उसकी कंकाल जैसी शाखाएं एकदम उघड़ी हुई नंगी दिखाई दे रही थी। उन टूटी फूटी ईंटों से लटक रही वह बेल। सूने पूछा, क्या है जानी? अत्यंत धीमे स्वर में जॉन्सी बोली, 6। अब वे जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहाँ करीब 100 थी। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। वह एक और गिरी, अब बची सिर्फ 5। 5 क्या? क्या जॉन्सी, 5 क्या? अपने सू को नहीं बताओगी? पत्तियाँ, उस बेल की पत्तियाँ, जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार के साथ सू ने शिकायत की, ओह इतनी बेवकूफी तो कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार किया करती थी सिर्फ इसलिए? बदमाश, अपनी बेवकूफियां बंद कर और मुझे मत डरा। अभी सुबह ही तो डॉक्टर आकर गया है। वो तेरे जल्दी ठीक होने की संभावना है बता कर गया है। ठीक ठीक किन शब्दों में कहा था? हाँ कहा तो था, संभावना रुपए में 14 आने हैं। वो न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं रहती। अब थोड़ा सूप पीने की कोशिश कर, अपनी सूप को तस्वीर बनाने दे ताकि उसे संपादक महोदय के हाथों बेचकर वह अपनी बीमार दोस्त के लिए थोड़ी दवा दारू और उसके खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी तो खरीद सके। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शराब लाने की जरूरत नहीं है। वह एक और गिरी। नहीं, मुझे तो सूप की भी अब जरूरत नहीं है। अब सिर्फ चार रह गई हैं। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूं, बस फिर मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी शांति से। बस आखिरी पत्ती को देख लूं, फिर मैं भी चली जाऊंगी। सूस पर झुकती हुई बोली थी, प्यारी जानसी, तुझे प्रतिज्ञा करनी होगी। तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम करती हूँ खिड़की से बाहर नहीं देखेगी, समझी? कल तक ये तस्वीर पहुँचा देनी है, मुझे रोशनी की ज़रूरत है, वरना अभी खिड़की बंद कर देती। जानसी ने रुखाई से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए, इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने देना भी नहीं चाहती, इसलिए मैं यहीं बैठकर चित्र बनाऊंगी। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफ़ेद अपनी आंखें बंद करती हुई जानसी बोली, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ और उस बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे 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 धीरे धीरे नीचे चली जाना चाहती हूँ। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश क्यों नहीं करती है? चुपचाप सो जा, मैं खान में मजदूरों का मॉडल बनाने के लिए उस बेहरमैन को बुला लाती हूँ। अभी एक मिनट में आई और एक मिनट में गई और देख फौरन लौट आऊंगी। जब तक मैं नहीं लौटती तो हिलना भी मत और आंखें तो बिल्कुल मत खोलना। बूढ़ा बेहरमैन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था, वह भी कभी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजोल की तस्वीर में मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी बदशकल बंदर के सिर से किसी भूत के शरीर तक लहराती मालूम पड़ती है। बेहरमैन एक असफल कलाकार था। 40 साल से वह साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सका था। वह हर उस तस्वीर को बनाते समय यही सोचता था कि यह उसकी बेस्ट रचना होगी, पर कभी भी वैसा नहीं बना पाया। इधर कई साल से उसने व्यावसायिक विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय यह धंधा ही छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे, वह आजकल अपना पेट भरता था। वह जरूरत से ज़्यादा शराब पी लेता और अपनी उस बेस्ट रचना के विषय में बकवास करता जिसके सपने में वह जीता रहा था और जिसके सपने आज भी संजोए हुए था। वैसे वह बड़ा खूंखार बूढ़ा था जो नम्र आदमियों का जोरदार मजाक उड़ा सकता था और अपने को इन दोनों जवान कलाकारों का पहरेदार कुत्ता समझता था। दो लड़कियां और नीचे की बिल्डिंग में पहरेदारी करता यह कलाकार बेहरमैन। सू ने बेहरमैन से कहां हो, दिखाई नहीं दे रहे? घुप अंधेरे से उस इलाके में सू ने बेहरमैन को अपने अंधेरे अड्डे में पड़ा हुआ पाया। उसमें से बेर की गुटलियों सी गंध आ रही थी। एक कोने में वह कोरा कैनवास खड़ा था जो उसकी बेस्ट रचना की पहली रेखा का अंकन पाने की बाट जोहते 25 साल से यूं ही खड़ा था। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जानसी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की को भयभीत कल्पनाओं के साथ जी रही है और उन पत्तियों के साथ ही मर जाने के बारे में सोच रही है। यह सोचते सोचते उसकी पकड़ संसार से ढीली होती जा रही है। बूढ़े बेहरमैन ने इस मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर अपना तिरस्कार व्यक्त किया। वह बोला, क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? वह तो तुम्हारी दोस्त है। अरे बेचारी जानसी, सू ने कहा, वह बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है और बुखार के कारण उसके दिमाग में ऐसी अजीब अजीब कल्पनाएं जाग उठती हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अच्छा बेहरमैन, तुम अगर मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो। हो तो आखिर उल्लू के पट्टे ही, बेहरमैन चिल्लाया। तू तो लड़की की लड़की ही रही, किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। आधे घंटे से यही तो झीक रहा हूँ कि भाई चलता हूँ, अरे चल रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, यह जगह जानसी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक जगह तो नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी बेस्ट रचना बना लूँगा तब हम सब यहाँ से कहीं और चल चलेंगे, समझी ना? जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो जानसी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने भयभीत होकर खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ लिए ठंडी बरसात शुरू हो गई थी और लगातार बर्फ गिर रही थी। एक केटली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बेहरमैन को बिठाया गया, जिससे चट्टान पर बैठे हो किस जैसे कहीं किसी खान के मजदूर का कोई मॉडल रखा हुआ। एक घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सू की आँख खुली तो उसने देखा कि जानसी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़ कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दे, मैं देखना चाहती हूँ। विवश होकर सू को आज्ञा माननी पड़ी और खिड़की का पर्दा उठाना पड़ा। लेकिन यह क्या, रात भर वर्षा, आंधी तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई इस बेल में एक पत्ती शेष थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वह पत्ती जमीन से कई फीट ऊंची अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। जॉनसी ने कहा, यही आखिरी है। मैंने सोचा था कि यह रात में जरूर ही गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर कोई बात नहीं, यह आज गिर जाएगी और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल, अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल तो करा कर, तेरे बगैर मैं क्या करूंगी। पर जानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु यह आत्मा है। जब वह अपनी रहस्यमय लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी कर चुकी होती है तो सारी बातें गौण हो जाती हैं। त्यों त्यों संसार और मित्रता से बांधने वाले उसके बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। त्यों त्यों उसकी कल्पनाओं में उसे अधिक जोर से जकड़ना शुरू कर दिया होता है। दिन बीत गया और शाम की थोड़ी सी रोशनी में भी दीवार पर लगी हुई बेल से लटकी हुई वह पत्ती उन्हें दिखाई देती रही। पर तभी रात पड़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगी और वर्षा की झाड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बहने लगी। रोशनी होते ही निर्दयी जानसी ने आदेश दिया, पर्दे उठा दिए जाने चाहिए। सू, पर्दे उठाओ। बेल में पत्ती अब तक मौजूद थी। झांसी देर तक उसी को एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो चौके में स्टोव पर चिकन का सूप बना रही थी। झांसी बोली, सुडी, मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे यह बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस तरह मरना तो पाप है। ला मुझे थोड़ा सूप दे और कुछ दूध में जहर मिलाकर ला दे, पर नहीं, उससे पहले मुझे जरा शीशा दे। मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई एक घंटे के बाद वह बोली, सुडी, मुझे लगता है कि मैं कभी न कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए। सु कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सु के दुर्बल कांपते हाथ को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावनाएं 8 आना मानी जा सकती हैं। अगर परिचर्या अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगी। और अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? बेहरमैन, शायद कोई कलाकार है। निमोनिया से ग्रस्त हो गया है। अत्यंत दुर्बल और बुरा आदमी है और झटपट जोर की लगी है। उसे झपट लग गई है। बचने की कोई संभावना नहीं। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहाँ आराम ज़्यादा मिल सकता है। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, झांसी, अब खतरे से बाहर है, तुम्हारी जीत हुई। अब तो सिर्फ पथ्य और देखभाल की ज़रूरत है, अब झांसी को कोई खतरा नहीं। उस दिन शाम को सू झांसी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वह नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद निश्चिंत होकर बुन रही थी। उसने तकिए के उस ओर देखा, अपनी बांह सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी भोली भाली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेहरमैन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 2 रोज बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़फता पाया था। उसके कपड़े, यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह भीगे हुए और बर्फ के समान ठंडे हो गए थे। कोई नहीं जानता कि इसी भयानक रात में वह कहाँ गया था। लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक निसरनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वह पत्ती हिलती क्यों नहीं? मेरी प्यारी दोस्त, यही बेहरमैन की बेस्ट रचना थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात को उसने उसे बनाया था। धन्यवाद।